सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक क्या कहें, एक बड़ी मजेदार किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल, एरिक न्यूबे की ए शॉर्ट वॉक इन द हिंदू कुश। एडवेंचर है, ह्यूमर है और थोड़ी सी नादानी भी कह सकते हैं।
हाँ, नादानी शब्द शायद सही है। और ये किताब मतलब 1956 में लिखी गई, पर आज भी लगती है कि अरे ये तो अपनी ही बात हो रही है कहीं ना कहीं।
सही, ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि जब हम अपनी रोज की भूमिका, अपना तयशुदा रोल, उससे हटकर कुछ बिल्कुल अलग, कोई नया लक्ष्य।
हाँ, और शायद थोड़ा बेतुका सा लक्ष्य है, उसके पीछे जाते हैं तो क्या होता है।
और आजकल जब सब अपनी अपनी भूमिकाओं में इतने बंधे हुए हैं, ऑफिस, घर, जिम्मेदारियां,
बिल्कुल।
तब ये किताब एक ताजी हवा जैसी है, याद दिलाती है कि कभी कभी रास्ते से भटकना, कुछ नया ट्राई करना, भले ही फेल हो जाए।
हाँ, वो फेलियर भी कितना मजेदार हो सकता है। और साथ में वो 1950s का अफगानिस्तान, उसकी एक झलक मिलना भी कमाल है। वो दुनिया तो अब है ही नहीं वैसी।
तो चले पहले लेखक से मिलते हैं, एरिक न्यूबी। दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने ये सफर किया, वो कोई प्रोफेशनल माउंटेनियर या एक्सप्लोरर नहीं थे।
हाँ बिल्कुल नहीं, उनका रोज का काम, उनकी जो भूमिका थी वो तो बिल्कुल ही अलग थी। अंदाजा लगाइए क्या। हाँ, और शायद मुश्किल में भी ह्यूमर ढूंढने की आदत।
हाँ बिल्कुल, लेकिन पहाड़, पहाड़ उनके लिए एकदम नई चीज थे। ये भूमिका उनके लिए पूरी तरह से मतलब अनजान थी।
और यही बात उनकी राइटिंग की ताकत बन जाती है। वो कोई हीरो की तरह नहीं लिखते, वो एक आम इंसान की तरह लिखते हैं। घबराहट, गलतियां, हैरानी, सब कुछ पूरी ईमानदारी से।
और गजब के ह्यूमर के साथ वो खुद पर हंसते हैं।
हाँ, उनकी वो अनुभवहीनता ही हमें हंसाती है और दिखाती है कि एडवेंचर असल में कैसा होता है। धूल, मिट्टी, पसीना, डर और कभी कभी थोड़ी बेवकूफी भी।
अपनी नई भूमिका की जो चुनौतियां थीं, वो बिना लाग लपेट के दिखाते हैं।
तो कहानी क्या है? ये है 1956 की, एरिक न्यूबी और उनके दोस्त ह्यू कार्लेस। ह्यू कार्लेस उस वक्त डिप्लोमेट थे ब्रिटिश दूतावास में।
हाँ, तो वो अपनी राजनयिक भूमिका में थे।
बिल्कुल। तो ये दोनों दोस्त अचानक फैसला करते हैं कि वो अफगानिस्तान जाएंगे और हिंदू कुश पहाड़ों की एक चोटी है मीर समीर, कोई 19,880 फीट ऊंची, उस पर चढ़ेंगे। और लक्ष्य क्या? कि वो उस पर चढ़ने वाले पहले इंसान बनेंगे।
हाँ,
और तैयारी जैसा हमने कहा,
जीरो,
लगभग जीरो। बस थोड़ा वेल्स में रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग ली।
जो उनके ही शब्दों में उनकी नाकाबिलियत साबित करने के लिए ज्यादा थी।
सही। तो ये किताब उसी सफर का लेखा जोखा है, एक तरह से कॉमेडी ऑफ एरर्स है।
हाँ, और संस्कृतियों का टकराव भी है, दोस्ती की परीक्षा है, खुद को जानने का सफर है। ये सिर्फ पहाड़ चढ़ने के उस लक्ष्य के बारे में नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उस कोशिश के बारे में ज्यादा है, उस अनुभवहीन प्रयास के बारे में। और ये सवाल भी उठाती है कि क्या हमेशा लक्ष्य पाना ही जरूरी है।
किताब हमें ले जाती है 1950 के लंदन से, फिर इस्तांबुल, तेहरान, फिर काबुल और फिर अफगानिस्तान का वो दूर का इलाका नूरिस्तान। तब वो प्रतिबंधित था। और हम न्यूबी के साथ चलते हैं, उनकी बाहरी यात्रा भी देखते हैं और अंदरूनी भी, कैसे एक आराम वाली भूमिका निभाने वाला इंसान अचानक इतनी शारीरिक और मानसिक मुश्किलों का सामना करना सीखता है।
हाँ, जब लक्ष्य इतना मुश्किल हो और इसमें कई परतें हैं, जैसे पश्चिमी दुनिया की सोच और मध्य एशिया की जमीनी हकीकत का फर्क।
बिल्कुल, मुश्किल में दोस्ती कैसे निखरती है,
रोमांच की हमारी कल्पना और असलियत का अंतर। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मुश्किलों में भी हंसने की कला।
और उस जमाने का नूरिस्तान, जिसे पहले काफिरिस्तान कहते थे, वहां के लोग, उनकी जिंदगी, उसकी भी एक झलक मिलती है जो बाहरी दुनिया से कटे हुए थे।
हाँ, ये दिखाती है कि जब आप अपनी रोज की भूमिका से बाहर निकलते हैं तो दुनिया कितनी अलग दिख सकती है।
तो चलो इस सफर के कुछ खास पड़ाव पर थोड़ा और गौर करते हैं। शुरुआत होती है लंदन से। न्यूबी अपनी फैशन वाली नौकरी, अपनी भूमिका से मतलब बुरी तरह बोर हो चुके हैं।
हाँ, उन्हें कुछ अलग चाहिए, कुछ रोमांचक।
टेलीग्राम भेजते हैं, बस कुछ शब्द, क्या जून में नूरिस्तान चल सकते हो?
और जवाब, वो भी उतना ही छोटा और अचानक।
हाँ,
बस
इन्हीं दो शब्दों से ये पूरी कहानी शुरू हो जाती है। कमाल है ना, कैसे जिंदगी के बड़े मोड़ कभी कभी इतने अचानक आ जाते हैं।
हाँ, बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी पुरानी भूमिका को छोड़ने का एक झटके में लिया गया फैसला।
उनकी तैयारी का किस्सा तो और भी मजेदार है। वेल्स में कुछ दिन रॉक क्लाइंबिंग, नतीजा?
नतीजा ये कि उन्हें ये समझ आ गया कि पहाड़ चढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, पर सीखा कुछ खास नहीं,
बल्कि अपनी कमियां और ज्यादा समझ आ गईं। न्यूबी खुद लिखते हैं कि ट्रेनिंग के बाद वो चढ़ाई में बेहतर नहीं हुए पर अपनी नाकाबिलियत से अच्छे से वाकिफ हो गए।
तो ये उनके नए लक्ष्य के लिए तैयारी कम कॉमेडी ज्यादा थी।
फिर शुरू होती है असल यात्रा, पहले लंदन से काबुल गाड़ी से। उसमें भी परेशानियां, गाड़ी खराब होना, बॉर्डर क्रॉसिंग की दिक्कतें। काबुल पहुंचकर नूरस्तान जाने की परमिशन लेना भी एक टेढ़ी खीर साबित होता है।
और फिर शुरू होती है असली पदयात्रा, अ शॉर्ट वॉक।
हाँ, असली मशक्कत, कुलियों का इंतजाम, जानवरों का इंतजाम, भाषा की प्रॉब्लम, मोल भाव।
और फिर जैसे ही चलना शुरू करते हैं, पैरों में छाले, थकान, बेस्वाद खाना, पेट खराब।
मतलब रोमांच की जो भी रोमांटिक कल्पनाएं थी वो सब हवा हो गई। ये उनके नए लक्ष्य की कठोर सच्चाई थी जो उनकी पुरानी आरामदायक भूमिका से बिल्कुल अलग थी।
यात्रा का बड़ा हिस्सा गुजरता है नूरस्तान के पहाड़ों में। न्यूबी वहां के नजारों का वर्णन करते हैं, कठोर हैं लेकिन खूबसूरत भी हैं। फिर ऊंचाई की बीमारी, पेट की गड़बड़ियां, रोज की थकान।
और उनका सामना होता है नूरस्तानी लोगों से, वो गर्वित लोग, दुनिया से थोड़े कटे हुए।
हाँ, और न्यूबी उन्हें एक बाहरी व्यक्ति की भूमिका से देखते हैं, अपनी हैरानी, अपनी उलझन के साथ। कल्चरल डिफरेंस साफ दिखता है। बिल्कुल, आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद ओम मीर समीर के बेस कैंप तक पहुंचते हैं। अब कहानी थोड़ी पर्वतारोहण की तरफ जाती है,
लेकिन शौकिया पर्वतारोहण की।
एग्जैक्टली, चढ़ाई बहुत मुश्किल है, मौसम खराब, इक्विपमेंट अधूरे और फिजिकल लिमिट्स तक पहुंच रहे हैं।
और न्यूबी अपनी घबराहट, अपना डर सब ईमानदारी से लिखते हैं, कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं। वो अपनी नई भूमिका की जो सीमाएं हैं उन्हें महसूस कर रहे हैं।
बहुत कोशिश के बाद वो मेन चोटी तक तो नहीं पहुंच पाते,
नहीं,
लेकिन पास की एक छोटी चोटी तक पहुंच जाते हैं। थके हुए हैं, मौसम बिगड़ रहा है, तो उन्हें लौटना पड़ता है।
उनका जो शुरू का लक्ष्य था वो अधूरा रह गया, लेकिन यही किताब का असली पॉइंट है ना?
हाँ बिल्कुल, ये जो तथाकथित विफलता है यही कहानी का सेंटर बन जाता है कि उपलब्धि लक्ष्य तक पहुंचना नहीं था
बल्कि वो कोशिश थी, पूरी ईमानदारी, डर और हिम्मत के साथ की गई कोशिश। अपनी भूमिका से बाहर निकलकर जो किया वो महत्वपूर्ण था।
और फिर आता है वो सीन, कहानी का सबसे यादगार, सबसे मजेदार मोड़।
पहाड़ों से लौट रहे थके हारे।
हाँ, और शायद मन में थोड़ा गर्व भी होगा कि चलो कुछ तो किया।
बिल्कुल।
और तभी उनकी मुलाकात होती है महान एक्सप्लोरर विल्फ्रेड थिसेगर से।
ओ थिसेगर, वो तो असली हार्डकोर एक्सप्लोरर थे। कम से कम सामान, लोकल लोगों की तरह रहना।
हाँ बिल्कुल, रफ एंड टफ। और वो देखते हैं न्यूबी और कार्लस का सामान का ढेर, और खासकर
उनके एयर मैट्रेस, हवा वाले गद्दे।
हाँ, और थिसेगर का वो सवाल, वो तो इतिहास बन गया है। वो पूछते हैं, क्या मतलब तुम लोग नूरिस्तान में हवा वाला गद्दा लेकर आए हो?
इस एक सवाल में जैसे न्यूबी और कार्लस की सारी हवा निकल जाती है। उन्हें अपनी शौकिया हैसियत का एकदम से एहसास होता है।
हाँ, ये मुलाकात शौकिया बनाम पेशेवर के फर्क को इतने मजेदार ढंग से दिखाती है, और शायद ये भी कि आराम बनाम असली अनुभव क्या है।
बिल्कुल, ये उनकी जो एडवेंचरर वाली भूमिका थी उस पर एक तरह का कमेंट था।
अंत में वो नूरिस्तान से बाहर आते हैं, वापस काबुल, और फिर अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पुरानी भूमिकाओं में लौट जाते हैं।
पहाड़ों का वो अनुभव एक सपने जैसा लगने लगता है।
हाँ, और न्यूबी सोचते हैं कि यात्रा का असली मतलब चोटी जीतना नहीं था, मतलब था सहनशीलता, दोस्ती, अपनी सीमाओं को जानना।
अपनी आरामदायक भूमिका से निकलकर एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने का जो अनुभव था वही अपने आप में जीत थी, वो बदल चुके थे।
तो इससे हमें क्या गहरे संदेश मिलते हैं? पहला तो मेरे ख्याल से यही है, शौकियापन की खूबसूरती, और वो जिसे कहते हैं ग्लोरियस फेलियर।
हाँ, शानदार विफलता। न्यूबी दिखाते हैं कि जरूरी नहीं कि आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो तभी उसे करें, बस जोश हो, थोड़ा ह्यूमर हो और कोशिश करने की इच्छा हो
तो भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। लक्ष्य मिले ना मिले, वो सफर ही अपने आप में मायने रखता है, आज के जमाने में जहां परफेक्शन का इतना प्रेशर है।
बिल्कुल, ये सोचना ही कितना रिलीफ देता है। अपनी तय भूमिका से बाहर निकलने की हिम्मत करना ही बड़ी बात है।
दूसरा पॉइंट है वो ब्रिटिश ह्यूमर और सेल्फ डेप्रिकेशन, मतलब खुद का मजाक उड़ाना। न्यूबी बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी ऐसे बताते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
हाँ बिल्कुल, सूखे अंदाज में, जैसे पहाड़ से फिसलने का किस्सा ऐसे सुना रहे हो जैसे चाय का कप हाथ से छूट गया हो।
सही, ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में, खासकर जब आप अपनी जानी पहचानी भूमिका से बाहर हो, ह्यूमर कितना बड़ा सहारा बन सकता है।
ये मुश्किलों से डील करने का एक तरीका है, हम भी तो करते हैं ऐसा अपने अपने ढंग से।
हाँ, फिर है संस्कृतियों का टकराव और जुड़ाव। न्यूबी नूरिस्तानी कल्चर को एक बाहरी आदमी की नज़र से देखते हैं, कोई एक्सपर्ट होने का दावा नहीं करते,
बस अपनी हैरानी और जिज्ञासा दिखाते हैं। भाषा की दीवार है, समझ की सीमाएं हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते जुड़ाव के पल भी आते हैं।
हाँ, ये सिखाता है कि जब हम अपनी दुनिया या अपनी भूमिका से बाहर निकलकर दूसरों से मिलते हैं तो विनम्रता और सच्ची दिलचस्पी कितनी जरूरी है।
और हाँ दोस्ती, न्यूबी और कार्लेस का रिश्ता इस मुश्किल सफर में परखा जाता है। थकान, चिड़चिड़ाहट, डर,
इन सब के बावजूद वो एक दूसरे का साथ देते हैं। ये दिखाता है कि एक कॉमन गोल, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, रिश्तों को कैसे मजबूत बना सकता है। मुश्किल वक्त में एक अच्छे साथी की कीमत
अनमोल होती है, आपकी भूमिका चाहे जो भी हो।
और आखिर में रोमांच की हकीकत बनाम कल्पना, ये किताब दिखाती है कि असली एडवेंचर फिल्मों जैसा नहीं होता।
हाँ, उसमें असुविधा, गंदगी, बीमारी, डर सब शामिल हैं। न्यूबी ने फैशन की दुनिया की अपनी आरामदायक भूमिका छोड़ी और पाया कि पहाड़ों का लक्ष्य उतना रोमांटिक नहीं था जितना शायद सोचा हो।
यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में नए लक्ष्यों या भूमिकाओं की तरफ बढ़ते हुए थोड़ी यथार्थवादी उम्मीदें रखना बेहतर है।
इस किताब में कई बातें हैं जो याद रह जाती हैं, जैसे वो शुरू का टेलीग्राम, क्या जून में नूरिस्तान चल सकते हो? हाँ,
वो दो शब्द उस पूरी यात्रा की अचानक वाली, थोड़ी लापरवाह लेकिन पक्की भावना को पकड़ लेते हैं। कैसे जिंदगी बदल देने वाला फैसला इतने कम शब्दों में हो गया।
सही कहा, ये दिखाता है कि बड़े बदलाव कभी कभी बिना लंबी चौड़ी प्लानिंग के बस एक हाँ से शुरू हो जाते हैं। एक और बात जो मुझे याद आती है वो है ट्रेनिंग के बाद अपनी नाकाबिलियत का एहसास।
हाँ, जैसा न्यूबी ने कहा था कि हम चढ़ाई में माहिर तो नहीं हुए पर अपनी कमियों को बखूबी जान गए। ये उनकी ईमानदारी है, खुद पर हंसने की क्षमता।
बिल्कुल, ये एक्सपर्ट्स की कहानी नहीं है, ये आम इंसानों की कहानी है जो अपनी भूमिका से बड़ी चुनौती ले रहे थे।
और विल्फ्रेड थिसिगर का वो एयर मैट्रेस पर चौंकना, वो सवाल, सीरियसली एन एयर मैट्रेस इन नूरिस्तान, ये सिर्फ शौकिया और पेशेवर का फर्क नहीं दिखाता।
नहीं, ये सवाल भी खड़ा करता है कि हमें असल में कितनी चीजों की जरूरत है। क्या हमारा आराम हमें असली अनुभव से दूर कर रहा है?
हाँ, क्या हम अपनी बाहरी भूमिका जैसे ट्रैवलर की निभाते हुए अंदरूनी आराम की तलाश में रहते हैं?
और वो विचार भी बहुत गहरा है कि सबसे अच्छी यात्राएं उन सवालों के जवाब देती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था।
बिल्कुल, न्यूबी और कार्लेस मीर समीर के लक्ष्य के साथ निकले थे, पर यात्रा ने उन्हें खुद के बारे में, अपनी भूमिकाओं, अपनी सीमाओं, जिंदगी की प्राथमिकताओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।
हाँ, जब आप अपने कंफर्ट जोन, अपनी तय भूमिका से बाहर निकलते हैं तो नजरिया बदल जाता है।
तो इन सब बातों को हम अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? पहली चीज तो ये कि शानदार विफलता से डरना नहीं चाहिए।
हाँ, कोई नई स्किल सीखनी हो, कोई नया प्रोजेक्ट लेना हो या बस कुछ अलग करना हो, सिर्फ इसलिए पीछे ना हटें कि आप उसमें माहिर नहीं हैं।
अपनी मौजूदा भूमिका से बाहर निकलकर कोशिश करना ही अपने आप में एक जीत है, नतीजा चाहे जो हो।
दूसरा, ह्यूमर, हंसकर खुद पर हंसने की कला। जब चीजें मुश्किल हों, जब आप किसी नई भूमिका में हों या किसी मुश्किल लक्ष्य के पीछे हों,
तो थोड़ा हल्का फुल्का नजरिया, थोड़ी हंसी, वो तनाव कम कर सकती है और हिम्मत देती है। न्यूबी की तरह अपनी गलतियों पर हंसना सीखना।
और हाँ, जिंदगी में छोटे छोटे एडवेंचर्स के लिए हाँ कहना, रोज की बोरियत को तोड़ना।
जरूरी नहीं है कि हिंदू कुश ही जाना पड़े, रोज ऑफिस जाने का नया रास्ता लेना, कोई नई रेसिपी ट्राई करना या कोई ऐसी क्लास ज्वाइन करना जो आपकी सामान्य भूमिका से बिल्कुल अलग हो,
ये भी एक छोटा सा रोमांच हो सकता है।
थिसिगर वाली बात से सीखते हुए हम खुद से पूछ सकते हैं, हमें सच में क्या चाहिए? क्या हमारी चीजें हमें आजादी दे रही हैं या बोझ बन रही हैं?
हाँ, क्या हम अनुभवों को जी रहे हैं या सिर्फ सामान इकट्ठा कर रहे हैं? और अंत में अच्छे दोस्तों और साथियों की कदर करना।
बिल्कुल, जब आप कोई मुश्किल लक्ष्य या नई भूमिका अपनाते हैं तो सही लोगों का साथ सफर को आसान बना देता है।
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जिंदगी के सबसे यादगार पल अक्सर वो होते हैं जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं जाती, जब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। अपनी कमियों को मानना, उन पर हंसना और सिर्फ कोशिश करने के जज्बे को सलाम करना, ये जरूरी है। एक्सपर्ट होना उतना जरूरी नहीं जितना कोशिश करना, अपनी भूमिका से बाहर निकलने की हिम्मत करना।
और मेरे लिए ये कि अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना कितना जरूरी है, भले ही हम पूरी तरह तैयार ना हो, असली ग्रोथ वहीं होती है। लक्ष्य मिले ना मिले, वो अनुभव आपको हमेशा के लिए बदल देता है। और साथ ही जब हम अपनी भूमिका से बाहर निकलकर किसी दूसरी संस्कृति या माहौल में जाते हैं तो विनम्रता और खुला दिमाग रखना कितना जरूरी है।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, आखिरी बार कब आपने अपनी तय भूमिका से बाहर निकलकर कोई ऐसी चुनौती ली थी जिसका नतीजा पक्का नहीं था, सिर्फ अनुभव के लिए?
ऐसा कदम आपके किन अनसोचे सवालों के जवाब दे सकता है और आपके लक्ष्य को कैसे बदल सकता है, सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।